झलक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आदित्य के बगल में बैठी थी। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए आदित्य का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो झलक ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी उंगलियां दबा दीं। ये दृश्य देखते ही सिद्धार्थ का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। वो मन ही मन बड़बड़ाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती झलक। उठो, इस शादी को रोक दो। कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कह दो कि तुम मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आखिर चुप क्यों हो? लेकिन झलक की नज़र एक बार भी उसकी तरफ नहीं उठी। वो पूरी तरह बेपरवाह बैठी रही। उधर आकांक्षा के चेहरे पर धीरे धीरे सुकून उतरने लगा। वो मन ही मन बोली, शुक्र है, मुझे बेवजह डर लग रहा था। झलक ने सच में कुछ नहीं किया। अब ये शादी कोई नहीं रोक सकता। जहां एक तरफ सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे, वहीं आकांक्षा की मां ने भी अपनी बेटी के चेहरे पर सुकून साफ महसूस कर लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, देखा था ना, मैंने पहले ही कहा था, इस लड़की के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। जितना ये ड्रामा कर रही थी वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था। और वैसे भी ये लड़की मल्होत्रा होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। ये कोई मल्होत्रा परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक मामूली सी लड़की है। आखिर एक मामूली लड़की इतने बड़े और अमीर परिवार से कैसे टकरा सकती है? और अब तो आदित्य राणा ही इसका साथ दे रहा है, वरना मल्होत्रा परिवार भी इसका साथ छोड़ चुका है। आखिर कोई कब तक इसके झूठ का साथ देता? कहीं ना कहीं वहां मौजूद लगभग सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के ख्याल चल रहे थे। वहीं उर्वशी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर झलक इतनी शांत क्यों है। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? जिसे देखकर लग रहा था कि वो आज कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगी, उसने तो कुछ भी नहीं किया। आखिर उसके मन में चल क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ रणविजय के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थीं। उसने झलक को ध्यान से देखा और मन ही मन बोला, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? अगर ये कोई हंगामा ही नहीं करेगी तो मैं अपने प्लान का अगला कदम कैसे बढ़ाऊं? मैंने तो पूरा खेल इसी बात को ध्यान में रखकर तैयार किया था कि ये शादी रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत बैठी है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? अब पंडित जी ने सिद्धार्थ की तरफ सिंदूर बढ़ा दिया। दूल्हे राजा, अब दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। सिद्धार्थ के हाथ अपने आप कांप उठे। उसकी नजरें फिर से झलक पर चली गईं। वो अब भी आदित्य का हाथ थामे शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर ना कोई दर्द था, ना कोई शिकायत, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। सिद्धार्थ का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि सब कुछ छोड़कर झलक के पास चला जाए, लेकिन झलक तो पूरी शांति से वहीं बैठी हुई थी। यही बात सिद्धार्थ को भीतर तक बेचैन किए जा रही थी। वो पूरी तरह से अंदर ही अंदर एक अलग तरह की जंग लड़ रहा था। हाथों में सिंदूर लिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उसके हाथों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। आज पहली बार उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि वो झलक से कितना प्यार करता है। वो उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। उसका मन बार बार यही कह रहा था कि काश समय यही रुक जाए और ये पल कभी आगे ना बढ़े, लेकिन परिस्थितियां उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी थीं। वो लगातार इन्हीं बातों में उलझा हुआ था और उसका दिल बुरी तरह टूटता जा रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा मीडिया, देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, दोनों परिवारों की इज्जत और हजारों निगाहें उसी पर टिकी थीं। अब पीछे हटना सिर्फ उसकी नहीं, पूरे खुराना परिवार की बेइज्जती बन जाता। अपनी सारी बेचैनी और टूटते हुए दिल को दबाकर उसने आकांक्षा की मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर की वो लाल रेखा जैसे आकांक्षा की मांग में नहीं बल्कि सिद्धार्थ के दिल पर खिंच गई। आकांक्षा की आंखें खुशी से चमक उठीं। वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पंडित जी ने मंगलसूत्र आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ ने भारी मन से मंगलसूत्र उठाया। एक बार फिर उसकी नज़र झलक पर चली गई, लेकिन इस बार भी झलक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो मुस्कुराते हुए आदित्य से धीमी आवाज में कुछ कह रही थी, जिसे सुनकर आदित्य भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं अनामिका ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह महसूस कर रही थी। कहीं ना कहीं उसका दिल भी सुकून से भर गया था। वो मन ही मन गुस्से और तन से बोली, क्या हुआ सिद्धार्थ खुराना, बहुत शौक था ना तुम्हें झलक को नीचा दिखाने का, उसकी बेइज्जती करने का? क्या कुछ नहीं किया तुमने उसके साथ? शुरू से लेकर आज तक तुमने उसे तकलीफों के अलावा कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान किया है। मैं वादा करती हूँ तुम जिंदगी भर तड़पोगे, क्योंकि आज की ये शादी और आज की ये रात तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। और रही बात आकांक्षा की, तो उसके चेहरे की ये मुस्कान सिर्फ कुछ देर की मेहमान है, बहुत जल्द तुम दोनों अपना सब कुछ खो बैठोगे। अनामिका मन ही मन गुस्से में यही सब कहे जा रही थी। वहीं सिद्धार्थ का दिल ऐसा महसूस कर रहा था मानो किसी भारी पत्थर के नीचे दब गया हो। उसे सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। तभी रणविजय ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में बोला, क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हारे चेहरे को देखकर सब समझ में आ रहा है। खुद को संभालो, इस वक्त तुम्हें पूरी तरह शांत रहना होगा। और वैसे भी इस लड़की का इस तरह शांत रहना भी उसकी किसी चाल का हिस्सा हो सकता है। तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना है, शादी पूरी करनी होगी। तुम देखना, अगर ये लड़की यहाँ आई है तो इसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई चाल चल रही होगी। ये इतनी आसानी से शांत बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। जैसे जैसे रणविजय बोलता जा रहा था, झलक की तरफ उसकी नजरें और भी ज्यादा सख्त होती जा रही थीं। ऊपर से अनामिका के चेहरे पर फैली मुस्कान भी उसके भीतर गुस्से की आग को और भड़का रही थी। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा की मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो न जाने कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी कि सिद्धार्थ उसकी मांग में सिंदूर भरे और वो हमेशा के लिए खुराना एम्पायर की मालकिन बन जाए। सिद्धार्थ को पाना उसका सबसे बड़ा सपना था और आज उसका वही सपना पूरा हो रहा था। इस वक्त वो खुशी में पूरी तरह डूबी हुई थी। झलक का डर भी उसके दिल से लगभग निकल चुका था। सिंदूर की रस्म पूरी हो चुकी थी, अब सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने की देर थी। लेकिन एक बार फिर दर्द से मजबूर होकर सिद्धार्थ की नजर झलक की तरफ उठ गई। झलक सामने लगी टेबल पर आदित्य के साथ आराम से बैठी हुई थी। वो बेफिक्र होकर स्नैक्स खा रही थी। उसके सामने उसका पसंदीदा चिकन फ्राई रखा हुआ था। कभी वो मुस्कुराते हुए अपने हाथों से आदित्य को खिलाती तो कभी खुद खाकर उसकी तारीफ करते हुए कहती, अरे वाह, मानना पड़ेगा बहुत ही टेस्टी बनाया है। वहीं अनामिका भी अब उनके पास बैठी चटखारे लेकर खाते हुए मुस्कुराकर बोली, वाह यार, मजा ही आ गया। पूरे मंडप में कोई शादी की रस्में देखने में व्यस्त था तो कोई खाने पीने में। झलक भी उन्हीं लोगों में से एक की तरह पूरी शांति और आराम से बैठकर पेट भरकर खाना खा रही थी। झलक को इतनी बेफिक्र और शांत देखकर सिद्धार्थ का दिल जैसे पूरी तरह बैठ गया। यही दृश्य सिद्धार्थ के लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसने मजबूरी में आकांक्षा के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। भगवान आपके वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करें। पूरा मंडप तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई नए जोड़े को बधाइयां देने लगा। लेकिन उन तालियों के शोर के बीच चार लोग ऐसे थे जिनके मन में बिल्कुल अलग अलग तूफान चल रहे थे। एक तरफ आकांक्षा अपनी जीत पर खुश थी,
दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने ही फैसले के बोझ तले बिखर रहा था। उधर उर्वशी के मन में झलक की खामोशी सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी और रणविजय पहली बार अपने ही बनाए खेल को बिखरता हुआ महसूस कर रहा था। पूरे मंडप में तालियों की गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। सिद्धार्थ और आकांक्षा ने सातों फेरे पूरे कर लिए थे। सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म भी संपन्न हो चुकी थी। अब कानूनी और सामाजिक रूप से दोनों पति पत्नी बन चुके थे। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति और सभी खास मेहमान नए जोड़े को बधाइयां देने के लिए आगे बढ़ने लगे। आकांक्षा के चेहरे पर जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन बोली, आखिरकार मैं जीत गई। मुझे बेवजह ही झलक से डर लग रहा था। उसने मेरी शादी में कुछ भी नहीं किया। अब सिद्धार्थ हमेशा के लिए मेरा हो चुका है।